सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की
जय।
आचार्य कुंद कुंद स्वामी की
जय।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग तीर्थ वंदना के साथ साथ अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाए ऐसी भावना भी रखते हैं और आज शायद इसी उद्देश्य से हम सब यहां बैठे हुए हैं। मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि हम सब लोग यहां इस बात पे विचार करने के लिए उत्सुक हैं कि हम अपने जीवन को जो शेष रहा है उसे और कैसे बेहतर ढंग से जी सकते हैं। और शायद जीवन का अगर कोई सूत्र बना ले कि मुझे रोज अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना है तो भी हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, हमारा जीवन सार्थक होगा। क्योंकि एकमात्र मनुष्य जीवन है जहां हम अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जीने का विचार कर सकते हैं। छोटे छोटे जीवों को तो इतनी समझ है ही नहीं, वे तो ये समझते हैं कि कल अगर अच्छा खाना नहीं मिला आज मिल जाएगा तो मेरा जीवन बेहतर कहलाएगा, कल अच्छे कपड़े नहीं थे आज मुझे अच्छे कपड़े मिल गए इसलिए मेरा जीवन बेहतर हो गया। ये तो संसार में सभी जीव ऐसा विचार करते हैं लेकिन मनुष्य और उसमें भी श्रेष्ठ मनुष्य को विचार ये करना चाहिए कि कल मेरे जीवन में मैं जिसको अच्छा मानता हूं वे अच्छाइयां जितनी हैं उससे आज एक कदम मुझे आगे बढ़ना चाहिए और जो मेरे भीतर बुराइयां हैं उन्हें मुझे रोज रोज कम करना चाहिए, यही जीवन को बेहतर बनाने का ढंग है। लेकिन क्या करें, आज के समय में हम सब लोग हिसाब किताब से चलने वाले लोग हो गए, हमारे पास बुद्धि बहुत है, हम हर चीज का हिसाब किताब बना लेते हैं। लेकिन भैया अकेले बुद्धि से ही जीवन चलता हो ऐसा तो नहीं है, जैसे एक और एक जोड़ें तो दो हो जाएंगे और दो और दो जोड़ें तो चार हो जाएंगे। आप बहुत सफल नहीं है अपने सिस्टम में, मैं तो अपना वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं कर सकता, आप तो पूरा कम ज़्यादा कर लेते हैं फिर भी आप सफल नहीं कहलाएंगे। तो अपन इस बात पे बात विचार कर रहे हैं कि हम यदि बहुत हिसाब किताब से चलने लगते हैं तो उससे भी हमारा जीवन नहीं पूरा पूरा ठीक बन पाता है। जैसे एक और एक को जोड़ें तो दो होते हैं, दो और दो को जोड़ें तो चार होते हैं। एक बहुत सीधा सा एक जो गणित है वो हमें मालूम है, लेकिन क्या एक और एक को जुड़ने से दो ही होते हैं? ऐसा भी नहीं। कभी कभी तो एक और दो जुड़ जावे तो पूरा संसार हो जाता है, और कभी कभी एक और एक जुड़ जावे तो अनंत शांति का संसार प्राप्त हो जाता है। देखो ना, अगर विवाह कर लें तो संसार बस गया, और अगर भगवान के चरणों में अपने को सौंप दें तो एक और एक मिलकर के कहां पहुंच जाएंगे? सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। एक और एक का जोड़ अनंत भी हो सकता है क्या? ये कौन बताएगा? ये हिसाब किताब की दुनिया नहीं बता पाएगी, लेकिन क्या करें, अपन ऐसे ही हिसाब किताब से चलते हैं। एक गुरुजी थे, वो गणित के बहुत बढ़िया जानकार थे, सब हिसाब ठीक ठीक लगाते थे वो। एक बार क्या हुआ कि वो पिकनिक मनाने गए तो उनको नदी पार करना थी। हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा कि हिसाब किताब से कितना ही काम चलता है। सारा काम नहीं चलता, कुछ तो चलता है पर सारा नहीं चलता। और वो नदी किनारे पहुंचे तो अब वो समस्या ही कि नदी पार करेंगे तो कोई डूब ना जाए, तो निकट है पहले अपन हिसाब लगा। तो कैसा हिसाब लगाया उन्होंने, उतरे वो और यहां तक पहुंचे तो एक फिट, वहां आगे पहुंचे तो चार फिट गहरा है, और आगे पहुंचे तो साढ़े चार पांच फिट, और उन्होंने जो है इस तरह से खुद अकेले पार करके और डेप्थ नाप ली जगह जगह की, कि यहां इतना गहरा, यहां इतना गहरा। और फिर वो तो गणित जानते थे, उन्होंने टोटल किया, एवरेज निकाल लिया, टोटल डेप्थ एवरेज निकाल लो, यहां इतना गहरा वहां उतना गहरा, और पूरी नदी का टोटल डेप्थ निकाल के उसका औसत निकाल लिया, और फिर लिया अपना फीता तो नापा, छोटा वाला बेटा साढ़े तीन फिट का है, उससे बड़ी वाली गुड़िया साढ़े चार फिट की है, खुद साढ़े पांच फिट के हैं, और जीवन साथी भी साढ़े पांच फिट की है, बस नाप लिया, उसका भी औसत निकाल लिया, है कि नहीं? और जब उन्होंने देखा कि नदी की डेप्थ के औसत से हम सब प्राणियों का औसत ज्यादा है, तो उन्होंने कहा डोंट वरी, डोंट फियर, कोई डरने की चिंता की बात नहीं है, चलो कोई नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि नदी की गहराई से हम सब की ऊंचाई ज्यादा है, हमने निकाल लिया गणित। अब चले, वो चले तो थोड़ी देर के बाद अब वो जो साढ़े तीन फिट वाला था उसके तो तीन फिट कंधे तक आ गया। उनका मामला क्या है ये? तो जीवन साथी ने कहा कि क्या करवा रहे, डूब रहे क्या? अभी तो और गहरा मालूम पड़ रहा है और ये तो कंधे तक आ गया उसका। उन्होंने कहा ठहरो, कोई बात नहीं, हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई हो। तो वो फौरन भागे और किनारे पर आकर उन्होंने फिर से दुरुस्त किया अपना कैलकुलेशन और कहा कि वो तो बिल्कुल ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं, आगे चलते जाओ, पार हो जाएंगे। भैया ये तो कहानी है, ये तो एक घटना है, हमारे जीवन में रोज घटती है ऐसी घटना। हम भी ऐसे ही हिसाब किताब की दुनिया में हिसाब किताब से चलते हैं, जहां हम अपनी भावनाओं का उपयोग न करके सिर्फ बुद्धि का उपयोग करते हैं, वहां ऐसा ही होता है। वे सब क्या हुआ होगा, अपन इमेज करें, डूब ना गए होंगे, डूब ही गए होंगे, और हम और आप भी ज्यादा हिसाब किताब से चलेंगे तो डूबेंगे। हमें थोड़ा सा भावनात्मक भी होना चाहिए। जितना हम इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, जितने हम बौद्धिक हो गए हैं, उसी रेशियो में हमें इमोशनल भी होना चाहिए, भावनात्मक भी होना चाहिए। जैसे इंटेलिजेंट सी है वैसे जो है इमोशनलिटी भी होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए। जैसे जितने हम मैटेरियलिस्टिक हो गए, जितने हम भौतिकवादी हैं, उतने के साथ साथ हमारे जीवन में अध्यात्म भी होना चाहिए। भौतिकता का निषेध नहीं कर रहा हूं, वो सब चीजें आवश्यक हैं जीवन के लिए, लेकिन उन सब चीजों की आवश्यकता मुझे कहां तक है, उसके बाद मुझे अपने जीवन के कल्याण के लिए क्या आवश्यक है, ये भी मेरे मन में विचार बना रहना। ठीक इसी तरह मैं संसार की गुत्थियों को बुद्धि से सुलझा लेता हूं, लेकिन जीवन की गुत्थी अकेले बुद्धि से नहीं सुलझती, वो तो भावनाओं से सुलझती। ये भी हमारे मन में आज हम देखते हैं अच्छा खासा, माने पढ़ाई का प्रचार है, सब पढ़ रहे हैं, इतनी इतनी तरह की कहना चाहिए डिग्रीज हैं और इतना ज्ञान है लोगों के पास। जितना आज बौद्धिक हम हो गए हैं, जितनी अधिक बौद्धिकता हमारे भीतर बढ़ गई है, उतनी ही बौद्धिक परेशानियां भी हम पड़ गए। आज अगर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति से अपन गाली गलौज सुनते हैं तो कैसा लगता। आज ट्यूनिंग नहीं मिल पाती फैमिली में, इतने पढ़ने लिखने के बाद भी, तब कैसा लगता है कि काहे की ये पढ़ाई, इससे अच्छे तो वे बुद्धू हैं जो दोनों शांति से रह तो लेते हैं घर में, लेकिन इधर तो इतने पढ़े पढ़े हैं फिर भी एक दूसरे से ट्यूनिंग नहीं बनती, एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पाते, ना कि समाज के बीच, ना परिवार के बीच, ना और दूसरी बातों में, सभी में। तो ये बौद्धिकता जो है वो जहां हमारे लिए सुविधाजनक मालूम पड़ती थी, वहीं हमारे लिए बहुत बड़ी असुविधा का कारण बन गई। उसके पीछे अगर हम गौर से देखें तो बुद्धि अकेली जब जब भी होगी तब वो असुविधा ही पैदा करेगी, और बुद्धि के साथ अगर भावना और संवेदनशीलता का कॉम्बिनेशन हो जाए फिर देखिएगा वो बुद्धि आपको पार लगा दे। इतना ही अपन को सीखना चाहिए। आज आने वाली पीढ़ी को हम बुद्धि बांट रहे हैं, हम उनकी बुद्धि को परिष्कृत करने के उपाय कर रहे हैं, उनकी मेमोरी की, जैसे सुबह बात हुई थी कि हम उनकी मेमोरी शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाएं भी पवित्र हों इस बात का भी तो ध्यान रखना चाहिए। भावनाएं पवित्र नहीं है और बुद्धि बहुत है तो कहां ले जाएगी हमें, हमारे पतन के लिए ही प्रेरित करेगी बुद्धि हमेशा, क्योंकि वो तो हर चीज को एनालाइज करती है। भावनाएं जहां जोड़ने की बात करती हैं वहां बुद्धि तोड़ तोड़ के देखने की बात करती है। आज फैमिली सिमट करके चार लोगों में सीमित हो गई, फैमिली की डेफिनेशन बदल दी, क्या परिभाषा बना दी, फादर मदर और 18 साल से छोटे बेटा और बेटी, ये हो गई फैमिली। क्योंकि 18 साल से बड़े होंगे, 20-25 साल के होंगे तो मैरिज करके वो अपना सेपरेट फैमिली बना लेंगे, ना कोई दादा उसमें है, ना कोई ताऊ है, ना चाचा है, ना भाई है, ना बहन है, फैमिली के मायने सिर्फ इतना ही है। और पहले सब लोग एक साथ रह लेते थे, क्यों, क्योंकि भावनाएं थी वे एक दूसरे को जोड़ती थी। आज बुद्धि दिमाग लगाती है कि इतने लोगों को मैं मैनेज करूं, एक अकेला कमाने वाला मैं और ये सब मेरे पास बैठे बैठे खाएं, अरे वाह, अपना अपना करो, अपना अपना कमाओ, अपना अपना खाओ। हमारे भौतिक सुख सुविधा के साधन कम पड़ जाएंगे अगर हम चार लोगों को अपने घर में रख लेंगे। बुद्धि ने ये किया, बुद्धि ने हमें तोड़ तोड़ के और स्वार्थी भी बना दिया है। भैया स्वार्थी होना बुरा नहीं है, लेकिन एक हद तक, उसके बाद कोई भी चीज अगर अपनी हद से ज्यादा होती है तो कितनी भी प्यारी चीज क्यों ना हो वो फिर बैड इफेक्ट्स देना शुरू कर देती। हां, अतिवादिता आज निरंतर बढ़ती चली जा रही, हमें अपने भीतर झांक के देखना चाहिए कि हम इस अतिवादिता में तो नहीं पड़ गए हैं, हम बहुत अधिक बौद्धिक तो नहीं हो गए। एक व्यक्ति कवि हृदय थे, भावनाओं को बहुत ध्यान देते थे, वो जबलपुर गए, भेड़ाघाट में जलप्रपात देखने गए, तो वहां एक टैक्सी वाले को करा रात में, वो टैक्सी वाला उनको लेके गया अकेले को और छोड़ दिया उसने थोड़ी दूर। अब वहां कोई भी नहीं था तो कवि महोदय ने कहा कि अरे टैक्सी तो मैंने पूरी करी है, वापिस भी लौटूंगा, तुम यहां टैक्सी बैठे बैठे क्या करोगे, आओ मेरे साथ घूमेंगे अपन। अरे साहब कौन जाए वहां पर, क्यों, अरे वहां कुछ भी नहीं है, लोग तो बुद्धू हैं, अरे कुछ पत्थर पड़े हैं और ऊंचाई से पानी नीचे गिरता उसी के पीछे देखने भागते, ये क्या तरीका है। वो टैक्सी वाला ये कह रहा है, उसे अभी नहीं पता कि अकेले पत्थर के ऊपर से पानी गिरने में जो संगीत पैदा होता है जो लय पैदा होती, जो रिदिम पैदा होती है, उसके भी कोई मायने हैं। वो जीवन को परिवर्तित कर देती है। कभी कभी सन्नाटा भी जीवन को परिवर्तित कर देता, कभी कभी संगीत भी प्रकृति का परिवर्तन कर देता है जीवन को। लेकिन इतनी समझ, इतनी भावनात्मक अप्रोच अगर हमारी है तो ही हम इन चीजों का लाभ ले पाएंगे, अन्यथा तो हम ऐसे ही कह देंगे। आज अगर किसी साइंटिस्ट से पूछो कि एक फूल में क्या है, गुलाब के फूल में, तो ना वो कलर देखेगा, ना उसका खिलना महसूस कर पाएगा, ना उसकी सुगंध, वो तो डिसेक्ट करके बता देगा कि इतना फास्फोरस है और इतना इतना आयरन है और इतना और दूसरे केमिकल्स। तो ये एनालाइज करना अकेला पर्याप्त नहीं है जीवन के लिए। अपने शरीर में झांक करके देखें तो क्या भरा हुआ, अगर ऐसा एनालाइज करें तो। लेकिन उसी में चेतना है, अगर उसकी तरफ देखें तो हमारे भावों में निर्मलता आती। मेरे कहने का बहुत स्पष्ट आशय यही है कि हम जितने आज स्वयं और आने वाली पूरी पीढ़ी को बौद्धिकता परोस रहे हैं, हमें उसके साथ साथ उस बौद्धिकता को हजम करने के लिए थोड़ी सी भावनाओं की पवित्रता भी परोसनी चाहिए भैया, और वो अपने घर में ही परोसी जा सकती है। आजकल उसके लिए कोई कॉलेज नहीं है जहां क्षमा सिखाई जाती हो, जहां प्यार सिखाया जाता हो, जहां प्राणी मात्र के प्रति दया सिखाई जाती हो, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है। आज तुम दुनियादार कैसे बन सकते हो, तुम कैसे दूसरे को चीट करके अपना काम कर निकाल सकते हो, यही तो सिखाया जा रहा है। दो पैसे कमाने की विद्या सिखाई जा रही भैया, लेकिन संतोष पूर्वक जीवन कैसे जिया जा सकता है ये विद्या सिखाने वाला कोई भी नहीं है। हमें वो भी अपने जीवन में दोनों का समन्वय करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। वाणी, कर्म और मन, इन तीनों को हम बुद्धि और भावनाओं से समन्वित करें। कैसे करें? कर्म के बारे में ले लें अगर, तो कर्म हम शरीर से करते हैं, शरीर में हमारे इंद्रियां हैं, हम उन इंद्रियों का सदुपयोग करें, कर सकते हैं। अगर हमारे भीतर थोड़ी सी भी भावनात्मकता है तो हम दूसरे का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर हमारे भीतर थोड़ी सी भावनात्मकता है तो अपने कर्म करते हुए स्वयं की भी क्षति ना हो और दूसरे की भी क्षति ना हो, ऐसा मैं कर्म करूं, ये भावनात्मक व्यक्ति ही सोच सकता है। वरना तो बौद्धिक व्यक्ति तो यही सोचेगा, मुझे जिसमें लाभ होता है, हित नहीं, हित और लाभ में बहुत अंतर है। जिन चीजों से हित होता है कई बार उनमें लाभ नहीं होता, लेकिन जिन चीजों से हमें कई बार लाभ होता उनसे हमारा अहित होता। हमें झूठ बोलने से लाभ दिखाई पड़ता है तो हो सकता है कि झूठ बोलने से आपको कोई सांसारिक लाभ हो जाए, लेकिन झूठ बोलने से तो चेतना नीचे ही जाती है, पतित ही होती है। बहुत जरूरी है कि हम कर्म करें तो इस तरह से करें, दूसरे का भी ध्यान रख के करें, तब हम भावनात्मक कहलाएंगे। गांधी जी के जीवन का एक संदर्भ है, वो प्रयाग में कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें गए थे, नेहरू जी के पास में वहां रुके, तो सुबेरे से एक लोटे पानी से वो कुल्ला उल्ला करते थे, मुंह हाथ धोते थे, तो उनको एक लोटा पानी जो है वो दिया गया। और क्या हुआ कि बात में इतने मशगूल थे नेहरू जी से कि वो पानी खत्म हो गया पर मुंह नहीं धुल पाया ठीक, तो दूसरा लोटा लेना पड़ा। और जैसे ही याद आया कि अरे ये तो एक लोटा पानी पूरा खत्म हो गया, दूसरा लोटा पानी, तो एकदम चुप हो गए बात करते करते। नेहरू ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने खेद व्यक्त किया कि मैं एक लोटे में पानी में रोज मुंह हाथ धो लेता था, आज मुझे ध्यान नहीं रहा, दूसरा लोटा पानी का भरना पड़ा। सोचना आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, ये महापुरुषों के बूते की बात है, ऐसा सोच करके आप टाल नहीं देना, ये हम सब कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि से नहीं, हम दूसरे का ध्यान रख के भावनाओं से कर सकते हैं। और उन्होंने जवाब क्या दिया था? नेहरू जी ने कहा, अरे इतना आप चिंतित हो रहे हैं, इतना खेद व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ तो गंगा और यमुना दोनों बहती हैं, प्रयाग में बैठे हो आप, संगम पर बैठे हो। तो मालूम गांधी जी ने क्या कहा? वे सिर्फ मेरे लिए नहीं बहती, वे सबके लिए बहती हैं, मुझे तो अपना काम उसमें से एक लोटे में से ही करना चाहिए। और आज तो प्रकृति का दोहन करना पड़े तो करना पड़े, पेड़ों को काटना पड़े तो काटना पड़े, मेरा फर्नीचर बढ़िया बनना चाहिए और मेरे घर में मार्बल लगना चाहिए या कि कोई और स्टोन लगना चाहिए, लेकिन उस स्टोन के निकालने के लिए मैं प्रकृति का किस तरह से जबरदस्त दोहन कर रहा हूं या कि पेड़ों को काट करके फर्नीचर बना रहा हूं, इसकी तरफ कोई का ध्यान नहीं, लेकिन चल रहा है। ये कर्म को हम अगर थोड़ा सा भावनात्मकता दे देवें तो हमारे कर्मों पर अपने आप और हमारा जीवन पवित्र हुए बिना नहीं रहेगा। हम अपनी वाणी को भी इसी तरह से देना चाहें तो भावनात्मक दिशा दे सकते हैं, हमारे शब्द दूसरे को चोट ना पहुंचाएं, पर बधकार कठोर निंद नहीं वचन ऊंचा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले कठोर निंदनीय वचन का प्रयोग हम अपने जीवन में ना करें। सोचो तो जिस मुंह से भगवान के गुणगान करते हैं, इतना पवित्र हो गया वो जिह्वा, उसी से एक अपशब्द भी निकलता है, तब फिर अगले बार भगवान के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे कि ये वही जिह्वा है जिससे मैंने थोड़ी देर पहले दूसरे को ऐसे वचन बोले जिससे उसे तकलीफ हुई या कि आप शब्द बोले हैं, अब मैं किस इस जिह्वा से आपका नाम कैसे ले, ऐसा कभी नहीं लगता अपन को, क्यों? अपनी वाणी को हमने कभी भावनात्मक टच दिया ही नहीं है, हमें वह भी देना चाहिए और अपने मन को भी थोड़ा सा बुद्धि के साथ साथ भावनाओं से समन्वित करना चाहिए। आखिरी एक छोटा सा और उदाहरण, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन का है और बात इतनी ही पर्याप्त है, मैं सोचता हूँ समझने के लिए तो इतना काफ़ी है। अपने मन वाणी और कर्म को हम व्यवस्था दें, हम उनका सदुपयोग करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिले हैं, हम इनको ऐसे ही वेस्ट ना कर दें और हम आगे आने वालों को भी यही मैसेज दें कि हमें मन वाणी और शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, और सदुपयोग तभी होगा जब हम थोड़े से भावनात्मक होंगे और दूसरे का भी ध्यान रख के अपना जीवन जिएंगे। राष्ट्रपति लिंकन जब रास्ते से जाते थे तो लोग उनको, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, नौकर भी उनको जब प्रणाम करता था तो वे अपना हैट उतार करके उसे प्रणाम करते थे, लोगों को ये बात नहीं सुहाती थी। आज भी ऐसा ही है, कोई बड़ा व्यक्ति कोई बड़े व्यक्ति को प्रणाम करे तो होना तो ये चाहिए कि उसे और झुक जाना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है करो, तुम तो करोगे ही मेरे को प्रणाम, ऐसा भाव आ जाता है अपने मन में। अपन कौन सी आत्मा वात्मा की बात सुनना चाह रहे थे आप? कौन सी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं? अभी ये छोटी छोटी पीछा चीजों में फेल है अपन, बताइए नहीं है फेल? और राष्ट्रपति लिंकन जब ऐसा करते थे तो लोगों ने कहा कि ये तो आपका शोभा नहीं देता, आप इतने बड़े राष्ट्रपति हैं, एक सामान्य वो तो बहुत तुच्छ जीव हैं, उनको आप हैट उतार करके प्रणाम करते हैं। तो राष्ट्रपति लिंकन ने हंसते हुए कहा कि ये बताओ, कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा काहे से होता है? अपने गुणों से होता है, तो विनय एक गुण है कि नहीं है? हाँ विनय तो एक गुण है, तो जब उसने मेरी विनय करी तो क्या मैं उसकी विनय करूंगा तो छोटा हो जाऊंगा क्या? मैं तो विनय करके बड़ा ही हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा सोच, ऐसी भावनात्मकता हमारे मन में आवे तब तो जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। अभी तो हम अपने बेटे से भी तू करके बात करते हैं, कभी हमने अपने बच्चों से आप करके बात ही नहीं की, और चाहते हैं कि वे हमसे आप करके बात करें। बताइए, अगर तू तड़ाक की भाषा हम उनको सिखा देंगे तो कल के दिन वे सम्मान की भाषा कैसे बोल पाएंगे? कैसे उनके मन में, हमारे भीतर, हम अगर उनका आदर नहीं करेंगे तो वे हमारा आदर करने से क्यों नहीं दूर हटेंगे? हटेंगे डेफिनेटली। हमें यहां पर अपने मन में इतनी भावनात्मकता लानी चाहिए कि हम सबका सम्मान करें, वाणी भी सम्मानजनक बोलें और कर्म भी सम्मानजनक बोल करें। इतना भी अगर अपन कर ले, जिन कर्मों के करने से मेरी चेतना का अपमान होता है मैं उन कर्मों को नहीं करूं, जिस वाणी के बोलने से मेरी जिह्वा अपमानित होती है उन कर्मों को नहीं करूं, और जिन विचारों के सोचने से हम स्वयं अपना अपमान महसूस करते हैं। बताइए, कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचे और आपको मालूम पड़ जाए तो आप कितना अपमान फील करते हैं? कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल दे और अपना काम निकाल ले, आप अपना कितना अपमान महसूस करते हैं? नहीं करते हैं? कोई आपके प्रति और ऐसे कर्म करे जिससे कि आप अपमानित हो तो आप कैसा महसूस करते हैं? जब हम इन सब चीजों में अच्छा महसूस नहीं करते तो वे सब चीजें यदि हमारे भीतर हैं तो दूसरे भी तो ऐसा ही फील करते होंगे जैसा बुरा हमको लगता है। इतना थोड़ा सा अपने सोच में परिवर्तन आ जाए, कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा ना बने। भैया प्रयत्न करना चाहिए अपने जीवन को कम से कम हम बेहतर ढंग से जिए और अच्छा बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें तो हमारा जीवन जरूर से अच्छा बनेगा। इतना अच्छा जितने अच्छे भगवान हैं, जो कि वीतरागी हैं, राग द्वेष से रहित हैं, हम भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी भावना से कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए और इस राग द्वेष रूप संसार से पार होकर अपने उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकें। अपन नमोकार करते हैं।
उसे कल दूर करना है और जो अच्छाइयां आज उससे बन पड़ी हैं करोड़ में इजाफा करना है, उन्हें बढ़ाना है, तो कोई वजह नहीं मुझे समझ में आती है कि हमारा जीवन बेहतर ना हो सके। लेकिन प्रयत्न हमें स्वयं करना है। हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रयत्न ठीक दिशा में ना हो तो प्रयत्न जैसा फल देना चाहिए या हमें जैसा फल मिलने की आशा होती है वैसा फल नहीं मिलता। एक बार क्या हुआ था, एक नाव में बोटिंग करने के लिए बहुत सारे युवक गए थे और उन्होंने एक नाव वाले को तय भी कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि नाव वाले को ले जाने की क्या जरूरत, हम लोग तो इंटरटेन करेंगे, मजा करेंगे, तो हम खुद ही चला देंगे वोट, वोटिंग का मजा तभी तो आएगा। तो उन्होंने चप्पू संभाले और नाविक से कहा कि हम लोग आते हैं घुमा करके नाव और तुम्हें दे देंगे। सुबह तक रात हमारी नाव शुरू होगी, सुबह हम वापस लेकर के आएंगे। नाव वाले ने कहा ठीक है मालिक, आप इतनी देर के लिए ले लीजिए। और इन लोगों ने जो है वो चप्पू चलाना शुरू किए और दोनों तरफ से, नाविक तो एक ही तरफ से चप्पू चलाता था, इन्होंने दोनों किनारे पर बैठ करके चप्पू चलाए। सारी रात चप्पू चलते रहे, सारी रात उन्हें जो खाना और पीना था, खाना पीना समझते हैं, भोजन बिल्कुल अलग चीज है, खाना अलग चीज है ना। भोजन और पान ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और खाना और पीना शब्द ही खुद कह रहे हैं। तो वो खाते पीते रहे, अब आप समझ जाओ उन्होंने भोजन पान नहीं किया, उन्होंने खाया पिया। अब थोड़ा क्लियर हुआ, और बहुत क्लियर है ये तो सबको एकदम। भोजन पान को समझाना पड़ेगा, खाना पीना नहीं समझाना पड़ता। के जीवन में अपने उसके पैसे का नशा, देखा क्या है अपन ने जहां से चप्पू चलाना नाव, नाव तो वहीं खड़ी हुई। उनके समझ में नहीं आया कि बात क्या हुई। उतर करके देखा तो नाव तो रस्सी से किनारे से बंधी हुई थी, उन्होंने छोड़ी नहीं। भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग बहुत लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हो और हमारी नाव जिसमें बैठ के हम यात्रा करना चाहते हैं, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों की नाव में हम बैठ के यात्रा करना चाह रहे हैं, उनके कहे गए रास्ते पर हम अपनी यात्रा करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मोह हमारी आसक्ति से हम बंधे रहें और हमारी यात्रा चलती है। नहीं, हमें अपने भीतर जो कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है उससे थोड़ा सा मुक्त होकर के श्रेष्ठताओं की तरफ यात्रा शुरू करनी है। दोनों चीजें साइमल्टेनियस एक साथ चलने वाली हैं। इधर हम श्रेष्ठता की तरफ यात्रा भी करें और उधर जो श्रेष्ठता नहीं है, अश्रेष्ठताएं हैं, बुराइयां हैं, उनसे हम डिटेच भी, हम उनसे जुड़े रहें। जैसे कि एक कटोरे में और हम गंदगी भरे रहें और कोई उसमें हलवा दे 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 और ले रहे हम, तो बताइए स्वाद किस चीज का है। वही आए जो उसमें भरा हो। हमारे साथ भी यही होता है। बड़े बढ़िया बढ़िया हमारे पास थॉट्स हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया विचार हैं, लेकिन हमारा जीवन तो गंदा ही बना, तो फिर वो थॉट्स क्या करेंगे, वो प्रक्रिया क्या करेगी। हम दोहराते जाएंगे, हम विचार करते रहेंगे, लेकिन अपने भीतर की गंदगी जब तक हम वॉश आउट नहीं करेंगे तब तक वे सारे विचार, वे सारे रास्ते, वे सारी क्रियाएं जो हमें अच्छा बनाने वाली है तो उतना लाभ नहीं दे पाएंगे। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम सुख पाना चाहते हैं, लेकिन दुख का कारण क्या है ये भी तो जानना चाहिए। दुख है इस चीज का स्वीकार भी तो होना चाहिए। पहली सच्चाई है अगर देखें गौर से तो, कि हमारे जीवन में दुख है, अगर हम ये स्वीकार कर ले रहे तो कोई ना कोई सुख का रास्ता हमें मिल जाए। लेकिन हम कहते जरूर हैं कि हमें दुख है, लेकिन हम भीतर तक दुख को स्वीकार नहीं करते। आप कहेंगे कि बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। अच्छा भैया एक चीज पूछूं, आपके हाथ में, हमारे सबके हाथ में मान लो, अब वो चूंकि चाय का उदाहरण दे रहा था इसलिए मैंने आपका हाथ कह दिया, नहीं तो मैं अपने को भी शामिल कर लेता। मैं हर बात में अपने को भी शामिल करके, वो चाय तो मैं नहीं पीता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि महाराज भी पीते होंगे, वो कह रहे थे कि अपने हाथ में, वैसे कोई हाथ में नहीं खाता पीता, मान लो गर्म चीज आ जाए अपने हाथ में, ऐसा कर लो सुधार लेते, कोई गर्म चीज अपने हाथ में आ जाए, किसी से पूछना पड़ता भी है कि गर्म लग रही है, कहां रख दे रहे, छोड़े कि नहीं छोड़े, कब छोड़े, ऐसा कोई विचार नहीं करना पड़ता। जिस क्षण हमें गर्म लगती है उसी क्षण हम उसे छोड़ देते हैं। ऐसे ही जिस क्षण हमें जीवन में दुख है ये मालूम पड़ जाएगा, उसी क्षण हमारे भीतर उस दुख से बचने का उपाय भी अपने आप, जैसे हमने उस आग, उस गर्म चीज से बचने का उपाय किसी से बिना पूछे खोज लिए, ऐसे दुख की स्वीकृति, असल में हम लोग दुख को भीतर तक स्वीकार नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें ये, अच्छा निंदा हम करते हैं संसार की, किसी से पूछ लो वो कहेगा ऐसा है संसार, वैसा है संसार, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल इसमें कोई सार नहीं है, इसमें तो दुख ही दुख है। लेकिन इस सब के बावजूद भी संसार की निंदा करने वाले को गौर से देखना, वो उसी संसार में नर्ज भी उतना ही है, उतना ही आशक्त है। ये क्या चीज है? इसके मायने है कि बाहर बाहर हम कह रहे हैं कि वो संसार खराब है, लेकिन भीतर कहीं कोई चीज है जो ये कह रही है कि इसमें सुख मिलेगा, मिलेगा एक आशा। हम अंततः अभी निराश नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम भीतर तक उस दुख को स्वीकार नहीं कर पाते। इतने ही नहीं, क्या करें, हाँ थोड़ा मोड़ा संस्कार थोड़ी है, अनादिकाल का संस्कार, फिर हमें उस संस्कार वश दुख भी सुख मालूम पड़ने लगता है, लगता ही है। अपन गौर से देखें, मैंने तो एक उदाहरण पढ़ा था तो बड़ा थोड़ा आश्चर्यजनक भी हुआ और फिर हंसा भी है, आपको भी सुनाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। जेल का उदाहरण, उसमें एक पुराना कैदी था और बहुत दिन तक रहना था उसको, मालूम तो उसको एक कमरे में रहता था, उसको मिला ही था वो कमरा एक के, इसमें और कोई था ही नहीं कैदी। तो एक दिन एक कैदी और नया वाला आया, तो नया वाला कैदी यहां करके और अपना जो जितना सामान मिला था थोड़ा बहुत तो अंदर रखना चाहा, वो पुराना वाली कैदी मालूम क्या कहता, कितने दिन के लिए आए हो? बोलता एक दो साल के लिए। मैं कहता हूँ बाहर इधर बहुत दिन से रुके हुए, क्या समझते हो आप बताओ? बेबी जेल में, जेबी जेल में, लेकिन फिर जेल में भी राजा की तरह, जैसे घर में ना रहे हो ऐसे हम सबके साथ भी यही है। वो छोटी वाली जेल है उसमें भी ऐसे ही एहसास है, और ये बड़ी वाली जेल है इसमें भी यही एहसास है। असल में हमने कभी उस दुख को, वो जेल के दुख को दुख ही नहीं माना, अगर तो वहां सुख मान रहा तब तो वो कह रहा है कि तुम वहीं रख लो, हम बहुत दिन से रह रहे हैं, बहुत दिन रहना हमारे लिए यहां पर, तुम अभी भीतर मात्र को सामान हम ही ठीक है यहां पर। ये संस्कार हमारा ध्यान कर देखना पड़ेगा। मैं होमवर्क बहुत देता हूं, हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। अपन लोगों ने क्या किया है असल में, सुनना और स्वीकार कर लिया है, महाराज आप सुनाओ हम सुने, आप भी मजे में हम भी मजे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप बताओ हम होमवर्क करके आएंगे, हम घर जाकर के इन चीजों को प्रैक्टिकली देखेंगे अपने भीतर, अपनी छाती पर हाथ रख के कि क्या सच्ची है कि नहीं, क्या मैं ऐसे ही तो नहीं हूं? हाँ सचमुच मैं ऐसे ही, मैं दुख को बहुत सतही बहुत सर्फेशियल मानता हूं, मेरे भीतर तो इस संसार में कहीं सुख है ऐसा थॉट, ऐसा सोच, ऐसी दृष्टि है ही, तब तो मैं चीजों में से सुख निकालने की कोशिश करता हूं। मैं ये मानता हूं ना कि इनमें से मुझे सुख मिलेगा, पर मिलता अंततः दुख ही है। फिर इसके बाद में सोचता हूं कि शायद मेरा प्रोसीजर ठीक नहीं होगा, शायद ये वो चीज नहीं होगी जो जिससे उसको सुख मिलता है, मैं वही ज्यों की त्यों गेन करूंगा तब मुझे भी सुख मिलेगा। हम लोग तो इतना ही नहीं, हम तो सोचते हैं कि यहाँ और अभी सुख नहीं है, कहीं और कभी सुख होगा। नाउ इन हियर नहीं, देयर इन फ्यूचर। अगर यहाँ और अभी सुख नहीं मिला, कोई बात नहीं, कभी और कहीं तो मिलेगा, यहाँ होगा। ऐसी भाषा में हम जीते रहते हैं और हम दुख को दुख नहीं मान पाते। भैया पहला काम अपने को ये करना कि यहाँ जो दुख मिले उसको वास्तव में दुख मान करके उससे निजात पाने का कोई उपाय अपने भीतर खोजना। कोई बाहर से बताए वो अलग बात है, पर अपने भीतर भी उसके लिए खोजने की कोशिश करें, क्योंकि दुख है अगर तो दुख का कारण मेरी गर्दन में दर्द है तो मुझे विचार करना चाहिए कि रात में अगर तकिया लगा के सोया हो और खिसक गया होगा तो संभव है कि दर्द हो या कि और कोई वजह हो। ऐसा नहीं है कि वो अचानक ही दर्द हो गया, कोई ना कोई कारण हो उस दुख का कारण। अगर दुख को स्वीकार कर लेंगे तो दुख का कारण खोजेंगे। जो व्यक्ति दुख को स्वीकार नहीं करता, बीमारी को स्वीकार नहीं करता, वो स्वास्थ्य की चिंता गायब करेगा। बताइए डॉक्टर क्या गायब हो जाएगा? हम डॉक्टर के यहां जाए और वो पूछे कि आपको क्या है, कुछ नहीं है, तो कहेगा आय गायब हो। हमें ये कहना पड़ेगा कि हमें तकलीफ है भैया, हमको दुख है इसलिए। तो फिर वो डायग्नोज करता है, वो उसका कारण जानेंगे और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे। हमें भी ऐसे ही अपने भीतर अगर दुख की स्वीकृति है तो दुख की कोई वजह है, उस वजह को जानकर उसका उपाय भी करना। दुख की वजह क्या है मालूम? हमारा अपना एटीट्यूड। सुख और दुख यहां संसार में हमारे अपने सोच पर, हमारी अपनी मान्यता पर निर्भर है और कुछ नहीं। देखिए एक आचार्य का उदाहरण देता हूं और एक मैं जो पढ़ा वो देता हूं, दोनों मजे समझ में आए। कैसे? आचार्य जी ने एक उदाहरण दिया कि जैसे शिखर जी की वंदना सब करते हैं, करी होगी बहुत लोगों ने, जब ठंड के दिन में शिखर जी की वंदना को जाते हैं तो गलावन भी पहन लेते हैं, टोपो भी लगा लेते हैं और बढ़िया कोट और फिर बनियान और उसके भीतर भी, और मतलब जो हो सकता है जितना भी ठंड से बचाव का उपाय हो सकता सब पहन लेते हैं और चलते हैं। बड़ा अच्छा लगता, कितने कपड़े मेरे पास हैं, कितनी बढ़िया ठंड की बचत हो रही। और जब वहां से लौटते हैं ना 2-3 बजे, जब जरा गर्म हो जाता है तो फिर एक उतार के टांगते हैं, दूसरा उतार के टांगते, फिर वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कमा फेंक दे रही है बवाल। सुबह वही सुख दे रहा था, शाम होते रहा होते वही सुख। मेरा एटीट्यूड है, मेरा सोच है। वो सुबह सुख नहीं दे रहा था, मैंने मान लिया था। वो दोपहर में भी सुख नहीं दे रहा है, मैंने मान लिया। इतना ही। और एटीट्यूड देखिएगा, एक पिताजी अपने बेटे से बहुत परेशान है और उन्होंने अपने मित्र से कहा कि हमारा बेटा हमको बहुत तंग करता है, आप उसको समझा दें। तो उनके मित्र ने बेटे को बुलाया कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं और तुम उनको तंग करते हो। भैया मान लिया करें उनकी बात। बोले अंकल ये तो मुश्किल है, उनकी बात मानो तो मुश्किल है, नहीं मानो तो मुश्किल है ही। बोले कैसे? बोले कुछ नहीं, ऐसा हुआ कि मैं रोज दुकान जाता था और नए कपड़े बनाए थे, तो मैंने सोचा कि अब दुकान पे जाऊं तो नए कपड़े पहन के जाऊं। मैंने नए कपड़े पहन लिए, बढ़िया बनवाए थे। तो बस जैसे ही मैं दुकान पे पहुंचा तो पिताजी कहने लगे हम कमा कमा के रखते जा रहे हैं, भैया साहब ज्यादा बने घूम रहे, पहन लो हमारे राज में, पहन लो तुम भी मौज कर लो। तो हमें बड़ा हुआ लगा कि ठीक बात है, हमको क्यों पहनना चाहिए, हमने नहीं पहने। दूसरे चौथे दिन हमने वो जो पुराने रखे हुए थे वो पहन लिए, हमने बात मान ली उनकी। हमें लगा कि ये नहीं चाहते कि हम इतने बढ़िया कपड़े पहन के दुकान आए, तो हमने दूसरे दिन खराब वाले पहन लिए। जब हम खराब पहन के गए तो वो कहने लगे कि अभी तो हम कमा रहे हैं, हमारे सामने तो अच्छे पहन लो, नजवाओ हैं चार दिनों के सामने अच्छे पहनेंगे। अब बता अगर हम अच्छे पहनते हैं तो मुश्किल है और हम बुरे पहनते हैं तो मुश्किल है, अब क्या करें हम? ऐसा जिसका एटीट्यूड है, जिसको हर चीज में से दुखी निकालने की आदत पड़ गई है, वो हर चीज में दुख निकाल लेता है। अगर देखा जाए तो दुख और सुख हमारे अपने सोच पर निर्भर है। दुख का सबसे बड़ा कारण इनर कॉज अगर कोई है, बाहरी कारण तो बहुत हो सकते हैं। बाहर में किसी ने हमारे मन की बात नहीं की हमें दुख पहुंचा, किसी ने हमारे मन की बात कह दी हमको सुख पहुंचा, किसी ने हमारे मन का काम नहीं किया हमको दुख पहुंचा, किसी ने हमें हमारे मन की चीज नहीं दी, हमको दुख पहुंचा, ये बहुत बाहरी का है। लेकिन भीतर जो बहुत हिडन कॉज है, बहुत छिपा हुआ कारण है, वो मेरा अपना सोच है। मैं क्यों सोच रहा था कि ये चीज मिलने पर मुझे सुख मिलेगा? जब मैंने ऐसा सोच लिया है कि ये चीज मिलने पर मुझे सुख मिलेगा, तो उस चीज के नहीं मिलने पर तय है कि मुझे दुख मिलेगा। वो चीज मुझे दुख दे या ना दे, पर मैंने जो सोच लिया है वो मुझे दुखी करे। मेरा सोच मुझे बदलना चाहिए। उस दुख से बचने का उपाय है अपने सोच को बदले, अपनी दृष्टि को। भगवान महावीर स्वामी के बारे में मैंने कल इसीलिए कहा था, फिर उन्होंने एक दृष्टि दी कि उस तरह देखें हम इस संसार को, तो हमें वास्तविकता दिखाई पड़े। हम अपने चश्मे से, अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन हमें जैसा देखना चाहते हैं वैसा दिख जाता है। जैसी चीज है वैसा देखने का जो नजरिया है वो हमें अगर प्राप्त हो जाए, तो कोई वजह नहीं है कि हम इस दुख से बचने का उपाय न कर सकें। तीसरी बात है कि अगर दुख है और दुख का कारण है, तो दुख से बचने का कोई ना कोई उपाय तो है। और जब हम दुख से बच जाते हैं तो वही तो सुख की अवस्था है। अनाशक्ति दुख से बचने का उपाय है। बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे कहता हूं, फिर आप खूब सोचिए इसके चारों तरफ। जितना आपसे बने खुद सोचना चाहिए। देखो, कोई भी अपन को विचार दे सकता है, और मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए तो मेरे पास देने के लिए दो ही चीजें हैं, और हमेशा जहाँ जाता हूँ तो मैं कहता भी हूँ कि मेरे से दो ही चीजें लेना, मेरे पास प्रेम है, मेरे पास विचार है, बस इसके अलावा तीसरी चीज और क्या है बताइए। सब प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में प्रेम हो और हमारे पास श्रेष्ठ विचार हो, बस ये थाती है, ये भगवान की दी हुई विरासत है, उसको हम बांटते चलिए। और फिर खुद विचार अपने भीतर उसको सोचे और अपने भीतर जज्ब करके और अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल उतना करके आशक्ति समझते हैं। जैसे कि बिल्ली घर में घुस जाए तो वो सबसे पहले क्या खोजती है? दूर। और फिर उसको मिल जाएगा तो वो ढक्कन गिराती है और फिर उसमें मुंह डाल देती है। और अपन ने ढक्कन गिरने की आवाज सुन के अगर चौकी में पहुंचे किचन में लाठी लेकर, तो आप लाठी भी मार दीजिएगा फिर भी वो बर्तन नहीं छोड़ेगी, वो पीनेगी, गिरा देगी, फिर भागेगी लाठी खाने के बाद। अपना अहित जानते हुए भी जिस चीज को हम छोड़ नहीं पाते हैं वही हमारी आशक्ति है, और कोई बहुत बड़ी चीज है। हम अनाशक्त होने की कोशिश कैसे? हम वहीं तक करें जिसमें हमारा अहित न हो। हम उतना ही अपने जीवन में ग्रहण करें जिससे कि मेरा अहित न, उतना ही त्याग भी करें। ग्रहण और त्याग दोनों से जीवन चलता है, उतना ही ग्रहण उतना ही क्या जिससे कि मेरी आत्मा का है। अगर ऐसा हमारा सोच है तो दुख से बचने का सबसे अच्छा उपाय। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप त्यागी त्याग करें, त्यागी त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता, ग्रहण किए बिना त्याग कैसे करें? लेकिन ग्रहण कैसे करना ये सीखना भी बहुत जरूरी है। त्याग कैसे किया जाता ये तो दुनिया को मालूम, उसकी कोई प्रोसीजर नहीं होती, छोड़ दिया। लेकिन सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि ग्रहण करना, अगर हम लोग ये सीख ले रहे तो बहुत सारे दुखों से बच जाएंगे। कितना, कब, क्या, कैसे, ये चार प्रश्न होते हैं ग्रहण करने में। कितना ग्रहण करना? जितने में दूसरे का और मेरा दोनों का हित हो। कैसे ग्रहण करना? ऐसे जिसमें कि मेरा और दूसरे का हित हो। क्या ग्रहण करना? ऐसा जिससे कि मेरा और दूसरे का हित हो। कब ग्रहण करना? उन्हीं क्षणों में जो मुझे बहुत आवश्यक हो, अपने और दूसरे के हित के लिए आवश्यक हो गया करना। लेकिन चार प्रश्न अपने से पूछना बहुत कठिन। खाने की थाली पर बैठ करके पूछना कि क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्यों खाना, वाई क्यों खा रहा हूं, इसलिए खा रहा हूं ताकि मैं थोड़ा ताकत वाकत आ जाए, तो वो जो व्यक्ति था ना, वो जो जिसने मुझे उस दिन मारा था, आज गली में मिल जाएगा अकेला तो देखूंगा, इसलिए खा रहा हूं। नहीं, आज मैं अगर मिलेगा तो उसके पैर छूलूंगा, आज उससे माफी मांगूंगा कि पहले पता नहीं किस गुस्से में मुझे उस दिन और ऐसा ऐसा कह दिया था, मेरे बारे में तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, मेरा तेरे से कोई बैर नहीं है और मत बनाना अपने बैर, इसके लिए खाना खाया। क्या सोच है? अगर हम चाहें तो हम इस तरह से ग्रहण को भी अनाशक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं, क्या उसके पीछे तो अनाशक्ति है ही। कई बार इसलिए मैंने त्याग को भी शामिल कर दिया, क्योंकि त्याग के पीछे भी अशक्ति हो सकती संभव है। कैसे हो सकती त्याग के पीछे अशक्ति? आज तो अपन उपवास कर लेंगे तो कल अम्मा बढ़िया हलवा खिलाएगी, तो कल तो क्या फर्क पड़ता है। तो अपने त्याग के पीछे भी अशक्ति हो सकती, ग्रहण और त्याग दोनों में अनाशक्ति बहुत जरूरी, तब ये दुख से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। और तीसरी चीज सुख है, सुख की जो अवस्था है वो कैसी है? वह बहुत बहुत आंतरिक संतोष और बहुत आंतरिक शांति की है, आत्मसंतोष और आत्मशांति की अवस्था है। वो एक जो सुख की अवस्था है जो कि सिर्फ भगवान महसूस करते हैं, वो तो बहुत ऊंची अवस्था है, अपन उसके बारे में विचार किया कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है? व्यावहारिक रूप से हम क्या आत्मसंतोष और आत्मशांति पाकर उस सुख की अवस्था का अनुभव थोड़ा बहुत कर सकते हैं? कर सकते। हमारे भीतर अगर एक दृढ़ संकल्प है, अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमें अपने ऊपर विश्वास है, हम लोग बहुत कमजोर लोग हैं, हम लोगों का अपने ऊपर विश्वास नहीं है, कहते जरूर है, और जिसका अपने ऊपर विश्वास नहीं होता भगवान पे कितने विश्वास हो कोई ज्यादा लाभ नहीं हो। मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकता हूं, ये विश्वास, कोई और मेरे जीवन को अच्छा बना देगा ऐसा विश्वास तो कर सकते हैं आप, लेकिन मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकता हूं ये विश्वास, मैं जिस दिन चाहूं उस दिन अच्छा बना सकता हूं। मेरा जीवन अगर अच्छा नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ये बहुत मुश्किल सी चीज है पर इसको आसान बनाना चाहिए दृढ़ संकल्प के द्वारा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके भीतर होता है वो ही दृढ़ संकल्प कर सकता है कि मैं अब अपने जीवन को अच्छा बनाऊंगा, कौन बिगाड़ सकता है मेरे जीवन को, कौन मुझे दुखी कर सकता है, जब मेरा सुख मेरी अपनी क्वालिटी है, जब मेरा सुख मेरी अपनी कहना चाहिए निजी, इसको कौन सा शब्द कहूं, मेरी अपनी निजी सत्ता है, तब फिर कोई मुझे कैसे दुखी कर सके? क्यों मैं इसके लिए उदाहरण बताऊं आपको तो जल्दी समझ जाएंगे, बस आज इतनी ही बात करूंगा, फिर बैठेंगे कल, फिर बैठना है। आज मैं सोच रहा था कि आपसे क्या बात करूंगा, देखिए मैं बात कर रहा हूं, मैं प्रवचन देना नहीं बनता हूं, प्रवचन तो लिखा हुआ है कि त्रयो वक्ता, तीन ही वक्ता होते हैं, पहले नंबर सर्वज्ञ तीर्थंकर केवली भगवान, पहले प्रथम वक्ता वो हैं, दूसरे नंबर पर गणधर शुद्ध केवली महाराज, और तीसरे नंबर पर आराती आचार्या, परंपरा से जो आचार्य हैं कुनकुन स्वामी समुद्रभद्राचार्य जैसे महान आचार्य आचार्य श्री हमारे, वो है वास्तव में प्रवचन के प्रकृष्ट वचन, वो ही कह सकते हैं। हम तो बहुत सामान्य, हम तो आपसे सिर्फ एक बात कर रहे हैं, हम सब, हमें थोड़े से ऊंचे बिठाया आपने, आप थोड़े नीचे बैठे हैं, इससे ज्यादा और कोई अंतर आप समझे तो मानिएगा, पर अभी अपन सब आठों कर्मों से लगे हुए हैं और जब तक इनको नहीं कम करेंगे तब तक सब यहां सब समान है, ऐसा मान करके, लेकिन हमको धीरे धीरे ऊपर उठना है, ऐसा विचार अगर हमारे भीतर रहे तो कोई वजह नहीं है कि हम सब अपने को ऊंचे उठाएं, एक दूसरे से, किसी के पास कोई चीज है तो उससे लें और आगे बढ़ें। इसी दृष्टि से मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, एक नाव में, जहाज में, और बहुत लोग यात्रा कर रहे हैं, तो अचानक अनाउंस हुआ, देखो भाई कहानी है तो उसमें ऐसा अचानक अनाउंस हो सकता है, नहीं तो आप कहो कि ऐसा होता है, बहुत दिन तक नहीं होता, कहो जहाज में महीनों महीनों यात्रा करो, पानी वाली जहाज में कभी अनाउंस नहीं होता कि अब तूफान आने वाला है, लेकिन आप जो हमें अपना उदाहरण सुनाया था उसमें तो तूफान तो लाना ही पड़ेगा, तो आया तूफान आया और अनाउंस हुआ उसमें कि तूफान आने वाला, तो सब हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा तो करना क्या है फिर, बचाव का क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है, हमने सब कोशिश करके देख ली लेकिन बहुत तेज तूफान है और बचना मुश्किल है। तो फिर क्या करें? सब अपने अपने भगवान को याद करो। सब किसी को याद नहीं है भगवान, सबको तो ये लग रहा है कि दौड़ो कुछ उपाय कर लो बचने का। असल में जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है ना, वे ऐसे आड़े समय में भगवान पे विश्वास कर पाते, नहीं तो ऐसे आड़े समय में भगवान पे विश्वास भी नहीं होता। क्या नहीं तो आओ ही कहेगा तूफान, भगवान अगर हटे तो ऐसा आ जाएगा मन में। हाँ, अपन ये कहेंगे कि मंदिर में जो है रक्षा करने वाले जो होते हैं, हाँ होते होंगे, फिर चोरी काय को हुई थी। ऐसे उल्टी प्रश्न अपने मन में आएंगे तो अपन ये नहीं कहेंगे कि प्रार्थना करें, अपन ये कहेंगे तो फिर आई क्यों तूफान। तो सब लोग ने जो है कोई प्रार्थना प्रार्थना नहीं, कोई भगवान को याद नहीं, सब बेतहाशा है, इधर से उधर हट रहा है। लेकिन डेथ के ऊपर एक आदमी चुपचाप लेटा, लोगों ने सोचा शायद सो रहा होगा इसलिए इतना शांत है, जगाया उसको, वो तो सो थोड़ी रहा था, वो तो जाग ही रहा था, आंख खोल और मुस्कुरा रहा था। तुमने कहा कि सुनो तुम्हें सुनाई पड़ता है कि नहीं? उसने कहा बहुत अच्छे सुनाई पड़ता है। अरे तो तुमने सुना नहीं क्या? हाँ जरूर नहीं सुना होगा, अनाउंस हुआ है अनाउंस। उसने कहा हुआ है अनाउंस? अरे जहाज डूबने वाला है? उसने कहा हाँ डूबने वाला। अरे भैया तब तो बहुत मुश्किल होगी, ऐसे में तो बहुत मुश्किल होगी, वो तो सब कह रहे क्या मालूम है। तो फिर लोगों के मन में आया कि शायद इसका दिमाग गड़बड़ होगा, नहीं तो ऐसे कैसे हो जाता कि वो बिल्कुल हम लोग इतने हड़बड़ाए हुए और वो इतना शांत। तो मालूम उसने क्या कहा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है? तुमने कहा कि कैसी बात कह रहे हो, क्या तुम अपने ऊपर विश्वास है? उसने कहा हाँ मुझे अपने भी विश्वास, तो दिखाओ तुम्हारा विश्वास कैसा है। तो कहानी में लिखा है कि वो डेक के ऊपर खड़ा हो गया और मालूम उसने क्या कहा, शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, पीस बी स्टिल पीस बी स्टिल पीस बी स्टिल। और कहते हैं कि धीरे धीरे जो समुद्र में तूफान था वो शांत है। मेरा के चमत्कार कहोगे आप इसको, मैं इसको कहता हूं आत्मा की शक्ति। ये हमारा अपना आत्मविश्वास है, हम शांत हैं। बाहर जितनी भी अशांति क्यों ना हो, अगर ऐसा उसका आध्यात्मिक अर्थ ले ले तो बाहर की अशांति कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, हमारे भीतर की शांति को वो जरा भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। भैया हमें इस तरह अपने जीवन को अच्छी दिशा लेना चाहिए, अपनी आसक्ति को कम करके, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके और अपने सोच को बदल करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। अब कैसे जारी रखें, मैं पूरा हो गया तो दूसरा प्रवचन शुरू करूं क्या? बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।